नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एआईएडीएमके के नेताओं के साथ भी चर्चा की। इससे पहले कल एक जनसभा में श्री शाह ने डीएमके सरकार पर वंशवादी शासन स्थापित करने और हिंदू विरोधी रुख अपनाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।
भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्राथमिक सौर सेल अंशांकन सुविधा और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत सौर सेल अंशांकन मानक सुविधा स्थापित करने वाला विश्व का पांचवा देश बन गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में खुतबाते मोदी लाल किला के फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। श्री प्रधान ने कहा कि इन भाषणों में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायालय ने मामले में पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन करने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को कांग्रेस और उसके समर्थकों की सहानुभूति के साथ विदेशों से भी पत्र मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को रोकने के अनुरोध से संबंधित झूठे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान तृणमूल कांग्रेस के फर्जी मतदाताओं, दिवंगत मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों को उजागर कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फ्रांस के पेरिस में सी क्वी सेट्रा में भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी भारत की वस्त्र विरासत, कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। मेनोनी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 13वें ओवर में दो विकेट पर 115 रन बना लिए हैं। खराब मौसम के कारण मुकाबला अभी रुका हुआ है। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।